सिद्धि कब होती है निर्जरा में?
आचार्य कहते हैं
धम्म
धर्म और
शुक्ल ध्यान द्वारा निर्जरा में विशेष रूप से वृद्धि होती है। धर्म और शुक्ल ध्यान तो आगे बतलाएंगे, ये परे मोक्ष हेतु, मोक्ष में जो कारणभूत ध्यान होते हैं वो धर्म और शुक्ल ध्यान होते हैं। अथैकादश निर्जराणां स्थान नियमं गाथा त्रयेण निर्दिशति। अब 11 जो निर्जरा के स्थान हैं उनका नियम कैसा क्या है, क्रम क्या है, उसको 3 गाथाओं के द्वारा स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि दर्शाते हैं। मिच्छादो सद्दिट्ठि असंख्य गुण कम्मणिज्जराहुधि तत्तो अणुवयधारी तत्तो यमहवैनाणि पठम कसाय चहुन्नम विजोजो तहय खवय क्सीलोय। दंसन मोह तियस्य तत्तो उवसमगचत्तारी खवगोय खीण मोहो सजोईणा हो तहा अजो ईया एदे उवरिम उवरिम असंख गुण कम्मणि जरया। ये जो है ओवरिम ओवरिम ऊपर ऊपर असंख गुण कम निर्जरा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाले होते हैं। मिच्छादो सद्दिट्ठि जब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है तब कर्म निर्जरा होती है, तो उससे असंख्यात गुणा क्रम हो जाता है, असंख्य गुण कम निर्जरा होती। मिथ्यात्व जब से जब सम्यक्त्व में प्रवेश करता है तब असंख्य गुणी कर्म निर्जरा होती है। तत्तो अणुवयधारी उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अणुव्रतों को धारण करने वाले के होती है, और अणुव्रतों को धारण करने वाले के जीवन भर होगी निर्जरा। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने वाले को जब प्रवेश करेगा उस समय होगी, और अणुव्रत धारण करने वाले को जीवन भर असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, ये याद रखने की बात। और तत्तो ये महवई नानी और उसके पश्चात उससे असंख्यात गुणी निर्जरा ज्ञानी जीव जो महाव्रती है उनके होगी। और पढ़म कड़ा कषाय चौन्नम विजोजो और 4 जो प्रथम कषाय अनंतानुबंधी होती उनका वियोजक अनंत वियोजक इनकी वही मुनि अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। विसंयोजना एक प्रकार का संक्रमण है। इस संक्रमण में क्या होता है कि उन परमाणुओं को कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट यानी परिवर्तित करना पड़ता है। कैसे? तो जैसे अनंतानुबंधी कषाय का उदय तो है नहीं मुनियों को, है क्या? नहीं, अनंतानुबंधी का उदय कौन से गुण स्थान तक है? कौन से? पहला और दूसरा। ये अपनी चर्चा दोपहर सर्वार्थ सिद्धि में काफी चल चुकी है कि दूसरा गुण स्थान कब होता है, जब मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया लेकिन अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरा गुण स्थान होता है। तो पहले और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, मुनिराज के नहीं है, लेकिन उदय न होते हुए भी वो कर्म आत्मा के साथ बंधा हुआ तो है, शांत है अभी, उदय में नहीं है लेकिन है तो सही उसकी सत्ता। अब उसकी सत्ता भी समाप्त कर दें तब उस प्रक्रिया का नाम है विसंयोजना। अनंतानुबंधी की विसंयोजना में क्या होता है कि अनंतानुबंधी के परमाणु जो अपने आत्मा के साथ बंधे हुए हैं उनको परिवर्तित कर देते हैं, वो परमाणु अब अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन कषाय के रूप में बदल दिए जाते हैं। माने उनकी शक्ति इतनी क्षीण कर देते हैं वो एक भावों की विशुद्धि से कि वो अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी के रूप में नहीं रह सकती। परमाणु तो रहेंगे वहां पर, लेकिन वो परमाणु अब क्षीण शक्ति होकर अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय रूप परिवर्तित हो जाएंगे। इस परिवर्तन का नाम है क्या? बोलो, अच्छा आधा क्यों बोल रहे हो शब्द? विसंयोजना, इसी को यहां पर वियोजक कहा है। अब वो नोकषाय रूप भी परिणत हो जाते हैं परमाणु। अनंतानुबंधी कषाय के जो परमाणु हैं वो कुछ हास, रति, अरति, शोक, भय, जो इनमें भी बदल जाते हैं। तो विसंयोजना की प्रक्रिया में वो सारे परमाणु इधर उधर बिल्कुल छट करके अपना स्वरूप छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि जब कोई जीव विसंयोजना से फिर नीचे पतित होता है, उस गुणस्थान से नीचे आ जाता है, यानी दूसरे या पहले गुणस्थान में आता है, तो दूसरे में तो नहीं आएगा, पहले में आएगा। तो पहले में आने पर फिर वापस वो सारे जो परमाणु थे अनंतानुबंधी के, जो दूसरी कषायों में परिवर्तित हुए थे, वो वापस फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करके अनंतानुबंधी कषाय के रूप में आ जाते हैं। और उसके लिए एक आवली का काल लगता है। तो कोई जीव विसंयोजक है और वहां से मिथ्यात्व का उदय अचानक आ जाए तो सीधा गुणस्थान पतित होगा, पहले गुणस्थान में आ गया। लेकिन अनंतानुबंधी है ही नहीं परमाणु एक भी वहां पर, उसके आत्म प्रदेशों में अनंतानुबंधी कषाय का पूर्णतः अभाव है। अब क्या होगा? मिथ्यात्व गुणस्थान है और अनंतानुबंधी कषाय है नहीं, अब क्या करें? तो वो जो परमाणु जो बदले हुए थे वो वापस अनंतानुबंधी के रूप में बदल करके फिर उदय में आएंगे। तो उसके बीच में जो समय लगता है वो एक आवली का समय है। एक आवली में कितने समय है? आवली असंख्य समया, असंख्यात समय है। तो उतने असंख्यात समय के काल में वो वापस अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, वो उतने में वापस संयोजित होती है और अनंतानुबंधी आ जाती है। तो ये जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले मुनिराज हैं, वो एक अन्य महाव्रती मुनि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाले होते हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए जो भावों की विशुद्धि बनती है और जो अंतरंग पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ असंख्यात गुणी निर्जरा की वृद्धि करता ही है। क्योंकि विशुद्धि कितनी बढ़ती है? अनंत गुणी। और निर्जरा कितनी बढ़ती है? असंख्यात गुणी। अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ने पर असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती है, ये नियम याद रखना। विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ेगी तो निर्जरा असंख्यात गुणी बढ़ेगी, ये नियम है, सिद्धांत है। संक्रमण का एक भेद है विसंयोजना। संक्रमण कई प्रकार के हैं, विद्यात संक्रमण, गुण संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण, विसंयोजना, ऐसे कई प्रकार के संक्रमण हैं। तो ये विसंयोजना एक भेद है उसका। फिर इनसे ज्यादा कौन करेगा निर्जरा? तो बोले खवय सीलोय, क्षपणशील, क्षपणशील, दंशन मोह तीयस, ठीक है। तीन जो दर्शन मोह की प्रकृतियां हैं, कौन सी है तीन दर्शन मोह की? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक्त्व प्रकृति नाम पूरा लेना। तो इन तीन कर्मों का जो खवणशील हुए, क्षपण करने में तत्पर है, कहने का मतलब ये हुआ जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले मुनिराज हैं, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले मुनि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा अधिक करते हैं। देखो क्रम बता रहे हैं पूरा। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में प्रवेश करने वाला जीव असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कर रहा है। फिर अणुव्रत धारण करने वाला पंचम गुण स्थान वाला जीव उससे असंख्यात गुणी, फिर मुनि पद में उससे असंख्यात गुणी निर्जरा, और उसके बाद मुनि महाराज जब विसंयोजना करते हैं अनंतानुबंधी की तो उससे असंख्यात गुणी विसंयोजना। अब तो आपको कठिन नहीं लग रहा? अब तो समझ में आ गया विसंयोजना का मतलब क्या है? हमें लगता है कि शायद इतना सरल कम लोग समझाते होंगे इतनी सरल भाषा में, ऐसा लगता है। हो सकता है और भी लोग समझाते हो, समझाते तो निश्चित है, लेकिन कभी कभी जो है कठिन पड़ता है समझने में। एकदम सरल तरीके से समझा दिया ना, अनंतानुबंधी के परमाणु हैं, वो परमाणु अब दूसरी प्रकृति के रूप में बदल जाएंगे, इसका नाम विसंयोजना। फिर विसंयोजना करने वाले मुनि से भी असंख्यात गुनी अधिक निर्जरा कौन करेंगे? क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले। और उनसे अधिक निर्जरा कौन करेंगे? उपशमक चत्तारी, चार जो उपशमक हैं। कौन से चार? आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें गुणस्थान वाले। और उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाले कौन मुनि होंगे? खवगो, क्षपक। अब क्षपक कौन से है? आठ, नौ और दस। और फिर क्षीण मोह, क्षीण मोह और आगे अलग से लिए, क्षीण मोह का मतलब बारहवें गुणस्थान वाले। इन क्षपकों से भी असंख्यात गुणी निर्जरा करेंगे। बारहवें गुणस्थान में तीन घातिया कर्म नष्ट होते हैं, दसवें गुणस्थान में मोहिनी कर्म नष्ट होता है। ये आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर अभी आज ले लो। दसवें गुणस्थान में मोहिनी कर्म जड़ से नष्ट हो जाता है अगर क्षपक श्रेणी हो तो। और क्षीण मोह यानी बारहवें गुणस्थान में बचे हुए जो तीन घातिया कर्म हैं, कौन से तीन? चार घातिया कर्म कौन से हैं पहले ये देख लो, फिर वो बाकी की गिनती गिनेंगे। पहले दसवें गुणस्थान में मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया, अब जो बाकी तीन घातिया कर्म बचे हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अब पकड़ में आएंगे अंतराय वेदनी नहीं है, वेदनीय वेदनी कर्म जो होता है अघातिया कर्म है। तो ऐसे ये चार कर्मों का जो क्षय होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। तत्वार्थ के दसवें अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? मोहक क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। तो मोहक क्षयात, ये पहले क्यों लिखा? क्योंकि मोह का क्षय दसवें गुणस्थान में होता है, पहले होता है। फिर ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच, इन तीनों का एक साथ बारहवें में होता है क्षय। तो इस प्रकार से ये हिसाब हो गया। तो क्षीण मोह, क्षीण मोह गुणस्थान में तीन क्षपक गुणस्थानों से असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। और फिर इनसे असंख्यात गुणी निर्जरा कौन करेंगे? सजोई नाहो, सयोगी नाथ। सयोगी नाथ, नाथ शब्द दिया है भगवान के लिए, केवली भगवान। और तहा अजोईया, और उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा अयोग केवली भगवान करते हैं। इस तरह ये ग्यारह स्थान असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के स्थान होते हैं। वहां दस स्थान दिए, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के कौन से अध्याय में? नवम अध्याय में, नवे अध्याय के अंत में। और फिर उसके बाद शायद पुलाक बकुशादिक मुनियों का वर्णन निर्जराधिकार में तत्वार्थ में। यहाँ ग्यारह स्थान दिए, आ गया ना स्पष्ट? गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इसमें पहला जो स्थान है उसको अपन देखो टीका में क्या दिया। प्रथमोपशम सम्यक्तोत्पत्तौ, जो पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त की जो उत्पत्ति हो रही है उस समय, कर्णत्रय परिणाम चरम समय, तीन करण रूप परिणाम होते हैं कर्ण लब्धि में। पांच लब्धियां होती है, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, चार। फिर आखिरी जो है कर्ण लब्धि। अब कर्ण लब्धि में तीन करण होते हैं, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, नहीं पहले अधकरण, पहले अधकरण, फिर अपूर्व करण, फिर तीसरा अनिवृत्ति करण। तो उसके चरम समय, अंतिम समय में वर्तमान विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि है, उसके अंतिम समय में वर्तमान यानी अवस्थित जो विशुद्ध विशुद्ध विशिष्ट मिथ्या दृष्टि है, विशेष रूप से विशुद्ध जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके आयुर्वर्जित ज्ञानावरणादि सप्तकर्मणाम यद गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम, जो गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य होता है, मतलब जितनी मात्रा में आयु को छोड़कर बाकी सात कर्म झड़ते हैं उस मिथ्या दृष्टि के, जो एक समय बाद सम्यक दृष्टि बनने वाला है। आ रहा है समझ में ना? मिथ्या तो गुणस्थान में अभी सम्यक दृष्टि हो ही रहा है, वो तो आखिरी समय चल रहा है अभी मिथ्या तो गुणस्थान का, कर्णत्रय चरम समय, अनिवृत्ति करण के अंतिम समय, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर सम्यक में आ जाएगा। तो वो जो अनिवृत्ति करण का आखिरी समय है, उस समय आयु को छोड़कर बाकी जो सात कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, नाम, गोत्र और अंतराय, आयु को छोड़कर इन सात कर्मों की निर्जरा का जो द्रव्य है, द्रव्य माने जो परमाणु है, कितने परमाणु झड़ रहे हैं उसके, तो उसके बारे में कह रहे हैं, ततः उसकी अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम भवति। उसकी तुलना में जब वो सम्यक दृष्टि बन जाता है, चौथे गुणस्थान में आता है, तो चौथे गुणस्थान में जो कर्म निर्जरा का, गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य है, वो असंख्यात गुना हो जाता है। तुलना की है, असंख्यात गुना कहा। अब गुना कहने पर ये प्रश्न उठेगा कि किसकी अपेक्षा, ऐसे ही गुना थोड़ी शब्द लगा दिया जाएगा। वो चौगुना ऊंचा है या चौगुना भोजन करता है, अब चौगुना भोजन किससे चौगुना करता है, ये प्रश्न तो आना ही है, या फिर सीधा चौगुना भोजन करता है। अब चौगुना भोजन बिना किसी सापेक्षता के वो वाकई गलत हो जाएगा। किससे चौगुना, अपने पिताजी से चौगुना या अपने बच्चे से चौगुना, पत्नी से चौगुना, किससे चौगुना। इसी प्रकार ये जो असंख्यात गुणी निर्जरा है, पहला स्थान, वो किस द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना है, तो बता दिया कि मिथ्या तुगुण स्थान में जो जीव सम्यक्त के अभिमुख हुआ है और अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अवस्थित है, उसको जो आयु के अतिरिक्त बाकी सात कर्मों की निर्जरा हो रही है, जो कर्म निर्जीर्ण हो रहा है, झड़ रहे हैं, उसकी तुलना में सम्यक दृष्टि बन जाने वाले जीव को असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। फिर ततः उससे ज्यादा देश संयतस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम। देश संयत का मतलब पांचवें गुण स्थान वर्ती उनके कर्मों की निर्जरा का द्रव्य, द्रव्य है ना वो परमाणुओं का पुंज, वो असंख्यात गुण है। ततः उससे ज्यादा सकल संयतस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम। ततः उससे ज्यादा अनंतानुबंधी कषाय विसंयोजकस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम। ततो दर्शन मोह क्षपण क्षपकस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम। ततः कषाय उपशम त्रयस्य कषायों का उपशम करने वाले तीन जो हैं, उन तीन गुणस्थानों में गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम। ततः उपशांत कषायस्य फिर उपशांत कषाय मुनि का जो गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यम असंख्यात गुणम, गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य व असंख्यात गुण। ततः क्षपकत्रयस्य फिर तीन क्षपक गुणस्थानों का गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य में असंख्यात गुण, मतलब ग्यारहवें गुणस्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा आठवें गुणस्थान वाले, नौवें दसवें गुणस्थान वाले क्षपक मुनि करते हैं। ततः क्षीण कषाय से गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य में असंख्यात गुणम, फिर क्षीण कषाय यानी बारहवें गुणस्थान वाले जो मुनि हैं उनकी गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुण है। ततः स्वस्थान केवली जिनस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य में असंख्यात गुणम, फिर अपने स्वस्थान में स्थित जो केवली भगवान है, समुद्घात नहीं कर रहे हैं अभी, उनकी गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुण है। तथा समुद्घात केवली जिनस्य गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य में असंख्यात गुणम, फिर समुद्घात केवली जो जिन है उनकी गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुण है। इत्येकादश स्वस्थाने गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्यस्य प्रतिस्थानम असंख्यात गुणितत्वम उक्तम। थोड़ा टीका में अलग प्रकार से क्रम दिया, गाथा में अलग दिया है, यहाँ समुद्घात वाले केवली भगवान का असंख्यात गुणा दिया और गाथा में जो दिया अजोइया योग रहित जो है उनका है। ठीक है, तो ये भी एक भंग अपने को मिल सकता है, ग्यारह स्थान निर्जरा के ऐसे भी बन जाएंगे और गाथा में जो दिए हैं वैसे भी बन जाएंगे। अब इसके बाद प्रैक्टिकल कैसे निर्जरा बढ़ती है उसको बता रहे सरल भाषा में। अभी तो ये तो टेक्निकल था, ये टेक्निकल वर्णन था, अब प्रैक्टिकल वर्णन देख लो क्या है। जो विसहदि दुव्वयणम साहम्य हीलनं च उवसग्गम। जिनियून कसाय रिउम तस्स हवेणिज्जरा विउला। जो विसहदि दुर्वचनम्, जो दुर्वचनों को सहन कर लेते हैं, यानी कोई कोई ऐसी गलत शब्द बोल दें तो उनको जो सहन कर लेते हैं, और साहम्य हीलनम विसहदि, और साधर्मी जन अगर आदर सत्कार नहीं करते, मानो सम्मान सत्कार जितना होना चाहिए उतना नहीं करते, तो फिर उसको भी शांतिपूर्वक सहन कर लेते हैं। उपसर्गम च, और उपसर्गों को भी सहन कर लेते हैं। कषाय रूप जिनियून, कषाय रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करके जो ये तीन कार्य कर लेते हैं, कौन से तीन? दुर्वचनों को शांति से सहन कर लेना, साधर्मी जन अगर उतना आदर नहीं दे रहे हैं आपको तो उस अनादर को भी शांति से सहन कर लेना, और तीसरी बात उपसर्गों को भी सहन कर लेना। ये तीन काम जो कर लेते हैं कषायों पर विजय प्राप्त करके, उनके विउला निर्जरा होते, भारी निर्जरा होती कर्मों की। बड़ी सुंदर बात, ये गाथा मौके पर याद आ जाए तो फिर बहुत अच्छा है। इसको रट लेना चाहिए, वैसे गाथा बहुत सुंदर है, 109 नंबर की गाथा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो व्रती है उन्हीं को अभी वो वाली निर्जरा होगी, है अविपाक निर्जरा। इसलिए व्रती बनने का भाव तो अपने हृदय में लाना चाहिए। अभी एक बहन बहुत दिनों से पूछ रही है हमसे यहीं हिम्मतनगर में कि पहली प्रतिमा का स्वरूप समझा दीजिए महाराज। देखो यंग लोगों में उत्साह रहता है, और बड़े लोग ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, और फिर कुछ पंडितों के चक्कर में पड़ गए तो जीवन भर असंयम में ही रहने वाले हैं। फिर अगर ऐसे कुछ पंडित मिल जाए जो मतलब कहेंगे कि अरे आज का काल बड़ा विकट है, और आज तो 12 व्रत बहुत मुश्किल है, जमाना खराब आ गया, पानी नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, घी नहीं, उनको कभी नहीं मिलने वाला। जिनके दिमाग में पहले से धारणा बनी है कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, जो मन के हारे हैं वो कभी जीत नहीं सकते, ये अकाट्य नियम है। और यंग लोग देखो आप कैसे कैसे नियम पालने वाले लोग हैं, हमारे गुरुजी के समागम से और फिर अन्य भी साधु संतों के सानिध्य से कितने लोग छोटी उम्र में कठोर नियम का पालन करते हैं और हो जाते हैं, संयमी हो जाते हैं। ये मत समझना कि गुणस्थान उनका ऐसे ही रहता होगा, मिथ्या गुणस्थान होगा, ऐसा नहीं। हर कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होते। रैणसार में आया है कि पंचम काल में सम्यक्त पूर्वक व्रत बहुत दुर्लभ है, और महाव्रत और भी दुर्लभ है। सम्यक्त के साथ अणुव्रत और महाव्रत पंचम काल में दुर्लभ है। दुर्लभ कहा है याद रखना, दुर्लभ शब्द का अर्थ अभाववाची नहीं होता। दुर्लभ का अर्थ क्या है? अब जैसे हीरे की अंगूठी है, सबके हाथ में होती है क्या? लेकिन आप ये कहो कि होती ही नहीं किसी के हाथ में, ये तो झूठ हो जाएगा ना। ये कैसे कह दोगे कि होती ही नहीं हीरे की अंगूठी? अरे भाई जिसके हाथ में है उसके पास तो है ही। तो इसी प्रकार जिसके पास सम्यक्त है और व्रत है तो फिर वो बराबर उस गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसका कभी निषेध नहीं करना गुणस्थान का। और सम्यक्त का जो खींचतान करके स्वरूप आप लोग बना लेते हैं, उसको इतना ज्यादा महिमा मंडित करते हैं कि आप सिद्धांत को भूल जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने आप ऐसा कहो कि सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेशिया हो सकती है, वो मानने को तैयार नहीं हुआ, लड़ाई करने खड़ा हो जाएगा। अरे क्या बोला तुमने, सम्यक दृष्टि, अरे उसको कृष्ण लेशिया? देखो मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, वो भगा देगा आप। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाओगे बताओ? अब उनसे यही पूछा जाए कि तुम हो क्या सम्यक दृष्टि, क्या जवाब देंगे? नहीं तो फिर क्या है कि ये भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। आप आगम को पढ़ो और फिर पता लगाओ, क्योंकि अगर आप आगम के विरुद्ध कोई बात करोगे जिनवाणी के, तो फिर उससे हानि किसी दूसरे की नहीं होगी, आपकी होगी। ये बात अलग है कि जो आपके श्रद्धालु हैं वो भी बेचारे घाटे में पड़ जाएंगे आप पर विश्वास करने के कारण। तो ऐसा हो जाता है, कई विद्वान आज वर्तमान में मानते हैं कि सातवीं प्रतिमा के ऊपर नहीं हो सकती। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि दूसरी प्रतिमा से आगे नहीं जा सकता कोई, लेकिन ये मान्यता सर्वथा आगम से विरुद्ध है। और ऐसी मान्यता बिना आधार के रखने वाला बिल्कुल स्पष्ट मिथ्या दृष्टि है। स्पष्ट मिथ्या दृष्टि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रैण सार की तीसरी गाथा में उल्लेख किया आचार्य कुंदकुन स्वामी ने, मधिसुद नान बलेण सच्छंदम बोले जिणुदिठम जो सो होई कुदिठी न होई सो जिण मग लग रवो। बड़ी सुंदर गाथा है कि जो अपने मति और श्रुत ज्ञान के बल से जिनेन्द्र भगवान की वाणी के बारे में भी जिनवाणी के नाम पर कुछ भी बोल जाता है, स्वच्छंदम बोल दे, जिनवाणी को भी स्वच्छंद होकर के यद्वा तद्वा प्ररूपित कर डालता है, सो कुदिठी हुई वो मिथ्या दृष्टि होता है। न होई जिन मग लग रहो, वो जिन मार्ग में श्रद्धानी नहीं हो सकता। अब इसलिए इस वचन पर हमेशा आप बिल्कुल कड़क रहना। अगर कोई भी कभी भी आपके कानों में ये शब्द आए कि आज पंचम काल में व्रती नहीं हो सकते, तो फिर एकदम सावधान रहना। अगर कोई भी ऐसा बोलता हो तो फिर उससे हाथ जोड़ देना, उससे हाथ जोड़ करके बोल देना कि अब दोबारा ये अपनी अंतिम मुलाकात है, जय जिनेन्द्र। बस उसके आगे ऐसी कुसंगति नहीं करना जो जिनवाणी से विपरीत प्ररूपण करके आपको संसार में कीचड़ में फंसाने वाले हैं। इसको कुसंगति के सिवाय क्या कहेंगे? जब आचार्य कुदृष्टि कह रहे हैं उसको, तो कुदृष्टि की संगति को क्या कहोगे? सुसंगति, सत्संगति या कुसंगति? वो एक व्यसनियों की संगति को कुसंगति कहते हैं, वो व्यावहारिक जगत की बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो व्यसनी नहीं है, काफी प्रभावशाली भी हो सकते हैं, पुण्य के उदय में बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों का। लेकिन अगर ऐसा कहें कि आज व्रत नहीं हो सकते, तो फिर आचार्य कुंदकुन स्वामी ने मोक्ष पहुड़ में लिखा है कि जो विषय कषायों में आसक्त है, व्रत धारण करने में असमर्थ है, वही पापी जीव कहता है कि आज व्रत नहीं हो सकते। देखो कुंदकुन स्वामी के वचनों को देखो आप, मोक्ष पहुड़ में अपनी आंखों को खोल करके पढ़ लेना आप, आचार्य कुंदकुन स्वामी ने क्या कहा है कि वही जीव कह सकता है कि आज व्रत नहीं होते, आज संयम नहीं होता, जो स्वयं विषय कषायों में आसक्त है। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। हमारे गुरुजी कहते हैं कि व्रती अगर कोई शास्त्र की पंक्ति का अनुवाद पढ़ के सुना दे दो चार पंक्तियां, तो हाथ जोड़ करके समझ लेना कि आज हमारा स्वाध्याय हो गया। और अगर कोई ऐसा असंयमी विद्वान आकर के आपको घंटे भर भाषण सुना करके चला जाए, तो थोड़ा संभल के चलना। उस पर अगर आप श्रद्धा कर लोगे तो हो सकता है कि भटक जाओ। वैसे तो कोई भी सही विद्वान होगा तो वो आपको भटकाएगा नहीं, वो ये बोल देगा कि मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन जिनमें शक्ति है वो तो बढ़ो आगे बोले। जैसे कृष्ण ने क्या कहा था द्वारिका में, श्री कृष्ण ने कह दिया था जब वो नेमिनाथ भगवान के यहाँ से लौटे और ये समाधान मिल गया था कि भाई 12 वर्ष बाद ये द्वारिका भस्म हो जाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी भविष्यवाणी सुन ली थी, तब उसी समय कृष्ण ने घोषणा कर दी थी कि द्वारिका में मदिरा कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी घोषणा की थी कि जिनको भी संयम धारण करना हो जिनेन्द्र भगवान के सानिध्य में, मेरी पूर्ण अनुमोदना है, मुझ में क्षमता नहीं है, लेकिन जिनमें क्षमता है वे अवश्य संयम धारण करें। देखो कितने सुंदर वचन है ये। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिनमें क्षमता है वो संयम धारण करें, लेकिन आज के युग में कुछ लोग कहते हैं कि संयम हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कथन जैन आगम का कथन नहीं है, ये जिनवाणी नहीं कहती, ये निजवाणी कह रही है। और जो निजवाणी ऐसी कह रही है तो बस समझ जाना कि ये खतरनाक आदमी है। बाकी किसी का पता चले या ना चले कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान पहचानना मुश्किल है, लेकिन जो जिनवाणी के खिलाफ स्पष्ट बोल रहा है वो तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे कई मिथ्या दृष्टियों की पहचान कराई रैणसार ग्रंथ में, जिसको गालियां देने की आदत होती है, जो कहीं भी किसी के भी गीत गाने लग जाता है, और जिसको मांगने की आदत है, कहीं भी चले जाओ उसका हाथ ऐसा ही मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा वो। आचार्य कहते हैं कि ऐसे जीव निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि रहते हैं, और जो जिनवाणी से विरुद्ध कथन करता है वो भी नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए ये जो कथन, ये अगर आज व्रत नहीं होते तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान आचार्य क्यों करते, वो अपना समय क्यों खराब करते? उनको पता था कि व्रत नहीं हो सकते आज, तो फिर क्यों लिखते इतने बड़े बड़े ग्रंथ, किसके लिए लिखते वो? और वो भी अपनी साधना छोड़ करके लिख करके गए। साधना छोड़ करके मतलब अपनी साधना में जो ध्यान में बैठ सकते थे और कोई तपस्या कर सकते थे, उतना काल उन्होंने आहार करके शास्त्र लिखने में लगा दिया। क्यों? वो जानते थे कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनीश्वर होते रहेंगे, और मुनीश्वर होंगे तो उनकी चर्या निभाने वाले श्रावक भी निश्चित रूप से होंगे। श्रावक न हो तो मुनि न हो, मुनि न हो तो श्रावक न हो। तीर्थ का विच्छेद कब माना जाता मालूम है? जब वक्ता, श्रोता और आचरणकर्ता तीनों का अभाव हो जाए, तब तीर्थ का विच्छेद होता है। तीर्थ विच्छेद की परिभाषा दी है आचार्य गुणभद्र स्वामी ने।